ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के प्रतिवेदन के मुताबिक नेपाल में करीब 20.26% जनसंख्या अभी भी गरीबी के रेखा से है नीचे। पार्टी एकताबद्ध होकर उच्च मनोबल के साथ निर्वाचन अभियान में जुटना होगा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का जोर। सवारी न्यूनीकरण विशेष अभियान ट्रैफिक सप्ताह आज से हुई शुरू। और ईरान में खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, तस्वीरों से सिगरेट जलाकर जताया अनोखा विरोध। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में करीब 20.27% जनसंख्या अभी भी गरीबी के रेखा से नीचे है, यह एक अध्ययन ने दिखाया है। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय द्वारा कल शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए गरीबी का लघु क्षेत्र अनुमान 2023 प्रतिवेदन के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 18.34% और ग्रामीण क्षेत्र में 24.66% जनसंख्या गरीबी के रेखा से नीचे है। प्रदेशगत रूप में सबसे अधिक गरीबी का दर सुदूरपश्चिम प्रदेश में 34.16% है, तो वहीं सबसे कम गंडकी प्रदेश में 11.88% है। प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तह स्तर का विश्लेषण करने पर 309 स्थानीय तहों के गरीबी का दर राष्ट्रीय औसत 20.27% से कम दिखाया गया है। 444 स्थानीय तहों के गरीबी का दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्थानीय तहों के पालिका स्तर में सबसे अधिक गरीबी का दर जाजरकोट की जूनी चांदे गांव पालिका में 77.79% है, तो वहीं सबसे कम अर्थात 1.18% मुस्तांग की घरपझोंग गांव पालिका में है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयरहित वातावरण सुनिश्चित होना चाहिए। पार्टी की केंद्रीय कमेटी की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि पूरे पार्टी पंक्ति एकताबद्ध, दृढ़ संकल्पित और उच्च मनोबल के साथ निर्वाचन अभियान में जुटना होगा। केंद्रीय कमेटी की बैठक से पूरे पार्टी पंक्ति को निर्वाचन के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए और आवश्यक तैयार को तेज करने का आह्वान किया गया है, यह जानकारी अध्यक्ष ओली ने दी। बता दें कि अध्यक्ष ओली ने कहा कि प्रतिनिधि सभा सदस्य का चुनाव एक ही चरण में होना चाहिए। कृषि और पशुपालन मंत्री डॉ मदन प्रसाद परियार ने कहा है कि सिल्क इंडस्ट्री गांवों में इनकम बढ़ाने और नौकरियां पैदा करने में अहम योगदान देगी। आज हैंडलूम फैब्रिक्स मेकर्स ऑफ नेपाल और सिल्क डेवलपमेंट सेंटर के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन में हुए नेशनल सिल्क कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरोसा जताया कि रेशम उत्पादन युवाओं को सीप और इंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट, सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और क्लाइमेट के हिसाब से ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और आर्थिक खुशहाली के जरिए देश की इकोनॉमी में योगदान देने की बहुत संभावना है। नेपाली कांग्रेस के पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री होमनाथ दाहाल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया है। आज पार्टी के कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का के सभापतित्व में केंद्रीय कार्यालय शानेपा में हुए पार्टी की आकस्मिक बैठक से पार्टी के पूर्व केंद्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता, पूर्व मंत्री एवं नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व सभापति दाहाल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित करके गहरा दुख व्यक्त किया। बैठक से दाहाल के निधन पर आज से 3 दिन पार्टी के केंद्र, प्रदेश और जिला कार्यालयों में झंडा आधा झुकाने और स्वर्गारोहण के 13वें दिन में संबंधित जिला ओखलडुंगा में शोक सभा आयोजन करने का निर्णय हुआ है। बता दें कि 84 वर्षीय दाहाल का कल रात निधन हो गया है। स्वर्गीय दाहाल का आज पशुपति आर्य घाट पर अंत्येष्टि किया गया है। उज्यालो नेपाल पार्टी ने कुलमान घिसिंग को अपना प्रेसिडेंट बनाया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ एकता फेल होने के बाद त्रिपुरेश्वर में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में हुए सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में घिसिंग को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसी तरह निवर्तमान अध्यक्ष ने भी पर्सनल वजहों से दिए गए प्रेसिडेंट अनूप कुमार उपाध्याय के इस्तीफे को मान लिया गया है। घिसिंग के उज्यालो नेपाल के प्रेसिडेंट बनने की फॉर्मल जानकारी देने के लिए आज पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट घिसिंग ने कहा कि भले ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एक आम मेंबर के तौर पर रहने को तैयार थे, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबै को यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष अभियान तथा ट्रैफिक सप्ताह 2082 आज से शुरू हुआ है। सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने कहा कि कठिन परिस्थिति और बड़े पैमाने पर हुए क्षति के बावजूद भी नेपाल प्रहरी नागरिकों के सुरक्षा के लिए निरंतर जुटी हुई है। आज काठमांडू घाटी ट्रैफिक कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महानिरीक्षक कार्की ने ट्रैफिक सप्ताह को केवल औपचारिक कार्यक्रम के रूप में न लेकर नागरिक चेतना अभिवृद्धि के अभियान के रूप में लेने का आग्रह किया। पर्यटन विभाग ने कैसीनो में आने वाले ग्राहक 2 लाख रकम से अधिक खर्च करते हैं तो उनका विवरण संकलन करने का व्यवस्था किया है। विभाग ने कैसीनो व्यवसायी को जारी किए निर्देशन 2082 को संशोधन करके वह व्यवस्था किया है। धनुषा के जनकपुर नगर के भीतर मांग अनुसार पेयजल वितरण तथा आपूर्ति न होने से 80% परिवार पेयजल के पहुंच से बाहर है। जनकपुर नगर क्षेत्र में दैनिक 2,50,00,000 लीटर पानी का मांग है, फिर भी संस्थान ने 20% घरों में ही पाइप मार्फत पेयजल आपूर्ति करते आया है। कार्यालय के प्रमुख विष्णुदेव साह ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना 2078 के तथ्यांक अनुसार अभी जनकपुर धाम में 40,409 परिवारों में से 5,000 में पेयजल के धारा सहित मीटर जड़ान किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में गहराते आर्थिक संकट को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनमें पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर ईरानी महिलाओं की तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें वो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरों को आग लगाकर उसे सिगरेट जला रही है। ईरान से आई ये तस्वीर केवल एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं बल्कि सत्ता और सत्ता की ओर से महिलाओं पर थोपे गए सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों के खिलाफ खुला ऐलान है। ईरान वो देश है जहां सर्वोच्च नेता की तस्वीर का अपमान करना और महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बिना हिजाब के बाहर निकलना या सिगरेट पीना गंभीर अपराध माना जाता है। वहां इस तरह का विरोध प्रदर्शन मौजूदा सत्ता के खिलाफ बढ़ते असंतोष और गुस्से को उजागर कर रहा है। महिला महिसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की जनता इतने बड़े पैमाने पर पहली बार सड़कों पर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के प्रतिवेदन के मुताबिक नेपाल में करीब 20.26% जनसंख्या अभी भी गरीबी के रेखा से है नीचे। पार्टी एकताबद्ध होकर उच्च मनोबल के साथ निर्वाचन अभियान में जुटना होगा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का जोड़। सवारी न्यूनीकरण विशेष अभियान ट्रैफिक सप्ताह आज से हुई शुरू। और ईरान में खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, तस्वीरों से सिगरेट जलाकर जताया अनोखा विरोध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।